शांति। आज हम एक महान हस्ती के बारे में सुनेंगे जो यज्ञ का नींव है, फाउंडेशन है, बड़ी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी, जिसने पूरा यज्ञ को संभाला बाबा के बाद। दादी के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो मम्मा के क्लासमेट थी और एक ही बेंच पर बैठते थे मम्मा और दादी हैदराबाद सिंध में। और इसके जो फादर थे, बाप थे, वो ज्योतिषी थे। हमेशा कहते थे ये बेटी मीरा बनेगी, इसलिए उसको पहले से ही पता था। जब स्कूल का हॉलीडेज आया, समर हॉलीडेज आया, तब उनको पिताजी ने कहा यहाँ बाबा का सत्संग चलता है, अब जाके सुनो। तो दादी को पहले ही साक्षात्कार हुआ था, कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था, और उसमें बाबा को भी उसने सफेद वस्त्रधारी बाबा को भी देखी थी। तो जब वो सत्संग में गई ही, उधर बाबा को देखते हुए फिर वापस उसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, वो ध्यान मग्न में चली गई और उसके साथ उसका माताजी भी साथ में चले। और बाबा ने उसको पहचाना और जो भी शुरू में बाबा ने ट्रस्टी बनाए उसमें दादी भी एक ट्रस्टी के ग्रुप में थी। तो उनका अनेक जो भी प्रतिभाएं थी बाबा उसने उनके अंदर देखकर उनको आगे बढ़ाया। जब बाबा हैदराबाद सिंध से काश्मीर चला गया था 6 महीने के लिए, उस समय भी बाबा ने मम्मा को और दादी को, दीदी को आगे बढ़ा के वो काश्मीर से रोज लेटर लिखते थे कि जब तक कि ओम निवास नहीं बनता है, बोर्डिंग स्कूल नहीं बनता है, तब तक ये जिम्मेवारी आप उठाना। सो बाबा उधर से ही सारा कारोबार चलाता था, क्योंकि उसको एकांत में जाना था बाबा को, क्योंकि ये सारा जो खेल चल रहा है ऊपर से उसका क्या रहस्य है उसको जानने के लिए बाबा ने एकांत के लिए काश्मीर चला गया था अपना परिवार के साथ। उस समय जो भी बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, ओम निवास में आए थे, उन सब की जिम्मेवारी दादी ने लिया था, बड़ी दादी ने। उस समय इतने छोटे बच्चे थे, किसी को स्नान कराना, किसी को ड्रेस पहनाना, ये सारा दादी ने शुरू से एक माँ का पार्ट बजाई। वो खुद 15-16 साल की उम्र होते हुए भी एक माँ का पार्ट बजाया दादी ने हैदराबाद सिंध में। और आगे की कहानी हम जानते हैं, कैसे वो समर्पित हो गए एक दक्ष से। जैसे ओम मंडली में आ गई दादी, फिर उसने मुड़ के नहीं देखा, अपना लौकिक घर में कभी नहीं गई। उसके साथ उसकी माँ भी चली, उसका बहन भी चली साथ में इस ज्ञान में। उसका बहन के बेटी भी जो कुंज दादी पटना में थी वो भी चली, पूरा परिवार चले। तो ऐसे दादी का सभी जो भी परिवार के सदस्य है वो सब इस ज्ञान में चले और बाप का फुल सपोर्ट था। दादी आगे बढ़ती गई। सो दादी की कुछ विशेषता जो हमने देखा मधुबन में आप सबको सुनाएंगे, हमने लिस्ट बनाए हैं, तो एक 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 करके सुनाएंगे। दादी के साथ तो हमने मौज ली है, बहुत बार पिकनिक भी किए हैं, साथ में रूढ़िग्रहण भी किए हैं, तो मैंने कुछ बातें लिखी है। दादी सबको एक समान देखते थे, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, सबको अपना सिर झुका के नमस्कार करती थी। छोटे वो कुछ कोई भी वो आंगन में निकलते थे, ऐसे ऐसे सिर झुका के नमस्कार करती थी दादी। बहुत निर्माण थी। और एक बार क्या हुआ कि ये रोटी कूट जाता था, कुछ लोगों को रोटी नहीं मिलते थे, खत्म हो जाता, तो कुछ लोगों ने मधुबन निवासी बोला, ऐसे घरेलू बात थी कि आप लोगों को रोटी मिल जाते हैं, आपको प्राइवेट किचन है, हमको रोटी नहीं मिलता है, ऐसे कुछ मधुबन वाले ने दादी को बोला घरेलू के रूप में। दादी ने बोला कल से जब तक सभी मधुबन निवासी लोग पूरा रोटी का समाचार नहीं मिलता, सब खा चुके हैं, तब मैं खाऊंगी भोजन। इसलिए ऐसे ऐसे एक हफ्ते दादी ने समाचार पूछते थे, सभी मधुबन निवासी भोजन कर लिया, रोटी मिल गया, उसके बाद वो भोजन करती थी। तो इसीलिए संगठन को लेकर दादी चली। तो मेन जो हमने देखा दादी के लाइफ में, संगठन को मजबूत बनाने में बहुत एक महान कार्य किया इस यज्ञ में। हर एक को संभालना, हर एक का बात सुनना है, हर एक के साथ एडजस्ट होना है। तो कभी कभी दादी क्षमा भी मांगती थी कि संगठन को, यूनिटी को बनाने में। ये सबसे महान कार्य दादी ने किया हमने देखा। तो एक बार क्या हुआ, थोड़ा आगे पीछे है, कहीं प्रसंग पहले का है, कहीं प्रसंग बाद का है, इसलिए ऑर्डर में नहीं चलता है। तो एक बार बाबा इधर आए थे ओम शांति भवन में, तो बाबा का जाने का टाइम हो गया था। उधर मधुबन वाले कुछ लोग बाबा को जिलेबी, गरम गरम जिलेबी खिलाएंगे करके सो जाता, तो वो लोग फटाफट उधर टोली किचन में जाके, पहले इधर टोली किचन है, वो किचन था, मेन किचन था पहले, सो उधर जाके वो जिलेबी बनाया। जब तक जिलेबी लेके आए ओम शांति भवन में दौड़ दौड़ के, तो बाबा आंख बंद कर दिया था, बाबा चला गया था, आंख बंद कर दिया था। ओ आंख बंद करने के बाद ये जिलेबी आके रखे बाबा के सामने, बाबा को उनको दिल में ये था जिलेबी। तो एक मिनट के बाद बाबा आंख खोल दिया। दादी ने बोला क्या आंख खोल दिया, दिल लग गया जिलेबी खाने की, ऐसे बाबा को पूछा। फिर दादी ने खिलाई, उसके बाद वो गरम था ना, फिर बाबा ने दादी को खिलाया। दादी समझे बहुत गरम है। इसलिए वो दादी जी इधर क्लास करते करते, पहले सोमवार के दिन अवैक्त मुरली चलता था, बाद में पहले सोमवार के दिन चलता था अवैक्त मुरली, बाद में अब संडे में परिवर्तन हुआ। सो दादी क्लास में सोमवार के दिन अवैक्त मुरली पढ़ते पढ़ते, एक बात बताओ बाबा कराची में सोमवार के दिन गरम गरम हलवा खिलाता था। जैसे दादी उस ऐसे बोले कि एक समाचार, बाबा ने हलवा खिलाता था, तुरंत दो टोली वाले उठ के चले जाते थे, कोई उसको कोई इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं थी, कुछ करने की जरूरत थी, टोली वाले सब उठ के चले जाते, जब तक मुरली पूरा हुए सबको गरम गरम हलवा मिल जाता था। ऐसे दादी का एक बहुत पर्सनालिटी थी, उसको वो संकल्प करे वो हो जाता था। ऐसे ही जो दादी जो आंगन में आती थी, तो कुछ लोग मधुबन वाले बैठते थे, बातें करते थे, उधर इधर की बातें होती थी आंगन में, तो जैसे दादी आंगन में आएगी सब चुप हो जाते थे, सब अपना अपना स्थान में चले जाते थे, चुप हो जाते, जो भी संकल्प वो साफ हो जाता था, फिर चुपचाप चले जाते। माना दादी का प्रेजेंस जो था बहुत महत्वपूर्ण था। कोई व्यर्थ बातें, कुछ भी बातें चल रहे थे, कोई गॉसिप, सब खत्म हो जाता था जैसे दादी एंटर करेगी ऐसे। एक बार हमने दादी से छुट्टी लेने के लिए गए, हमको नेचुरोपैथी में जाना था, तो नेचुरोपैथी में जाना था तो वो नेचुरोपैथी वाले ने बोला आपको 20 दिन टाइम देना पड़ेगा। तो हमने दादी के पास किया, दादी मुझे नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में जाना है, वो डॉक्टर ने बोला है 20 दिन के लिए। दादी ने बोला बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो दादी जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जाना है तो 10 दिन के अंदर आ जाना, 20 दिन नहीं। तो हमने बोला, हमारा आंखों में आंसू आ गया, तो अभी अभी 20 दिन डॉक्टर बोल रहा है और दादी बोल रहे 10 दिन के अंदर आ जाना। और दादी इतना मना डिसीशन भी नहीं दिया, फिर सिर पे हाथ रख दिया, बस सिर पे हाथ रख दिया और दृष्टि दिया और कुछ नहीं बोला। हाँ छुट्टी ले लो तुम 20 दिन के लिए, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बोला। फिर भी हम छुट्टी पे गया, 20 दिन लगा के आए। फिर दादी अभी मुझे डांटे कि मैंने 10 दिन स्पष्ट भी नहीं किया, 20 दिन में 20 दिन जाओ ये भी नहीं कहा, फिर दृष्टि देके चुप हो गया न्यारे प्यारे होकर। फिर मैं वापस आया तो दादी बैठी थी, मैं ऐसे देखा नहीं, मैं ऐसे ही चला गया, दादी मुझे कुछ पूछेगी करके। फिर मैं निकल गया वहां पास, नागराज भाई इधर आओ बोले। फिर मैं थोड़ा संकोच हुआ कि दादी कुछ बोलेगी, तो दादी ने पूछा डॉक्टर ने क्या कहा। तो मैंने बोला दादी डॉक्टर ने कहा एक टाइम फल खाने के लिए। तो फिर दादी ने यीशु दादी को बुलाया, यीशु दादी को बुला के नागराज भाई को डॉक्टर ने बोला है फल खाने के लिए, उसको पैसा दो। माना दादी हम डर रहे थे कुछ बोलेगी, फिर दादी ने कैसे संभाला, तो यीशु दादी को बोला इसको पैसा दे दो, उसको फल खाना है, डॉक्टर ने बोला है। इतना माना एक तो माता जैसे, मदर जैसे हमको पाला, ये नहीं पूछा तुम 20 दिन क्यों लगाया, हाल चाल पूछा। सो दादी भी ये हमारा मन के संकल्पों को पहचान लेती थी पूरा, जो भी हमारा अंदर क्या चल रहा है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, उसको पहले ही पता चल जाता हम क्या बोलने वाला है, हमारा अंदर क्या संकल्प है, वो सार रूप में सब कुछ समझ लेती थी। ये हमने एक्सपीरियंस किया। दादी जी को इधर मधुबन में रहना बहुत अच्छा लगता था, बाहर जाने की बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर बाहर का बहुत बहुत प्रोग्राम बनते थे, उस समय दादी जी का निमंत्रण मिलता था, तो हमने एक बार ऐसे दादी के साथ बैठे थे, दादी ने बोला देखो मुझे बाहर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन जब बाहर जाता हूं ना, उस समय इतना नहीं था इधर ये मधुबन में, इतना साहूकारी नहीं था, बहुत कंट्रोल में चलना पड़ता था। दादी ने बोला देखो जहां 15,000 आता है, उधर जब मैं जाता हूं यज्ञ में लाखों रुपए में मिलता है, यज्ञ के लिए मैं जाता हूं, मुझे कोई शौक नहीं बाहर जाने के लिए। तो इतना भावना से यज्ञ के सेवक, क्योंकि उस समय कंस्ट्रक्शन का काम है, एक्सपेंशन है, पैसे के एक एक पैसे के वैल्यू था, तो इसीलिए मैं जाता हूं, मुझे कोई शौक नहीं बाहर जाने का और कुछ शौक नहीं, दादी ने इसे बताया। तो पहले भी मैं बताया था, कभी बड़ों से हमारा अनबिन हो जाते थे, माना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, हमारा कोई गलती नहीं होता था, बड़ों से भी कुछ ऐसे हो जाता था, तो वो दादी को रिपोर्ट करते थे, दादी ये भाई ऐसा है, उसको समझाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दादी हमको प्राइवेट में बुलाती थी, बुला के बोलती थी, नागराज भाई तुमको ही मैं डांटूंगी उनके सामने, तुम चुप रहना। पर मैं जानता हूं तुम्हारा गलती नहीं है, लेकिन डांटूंगा तुमको, तो तुम चुप रहना। माना संगठन बनाने के लिए उनको भी सेटिस्फाई करना, साइकोलॉजिकल सर नागराज भाई को आज मिला और हम भी खुश रहे कि हाँ दादी ने ऐसे एक्टिंग किया। इसलिए संगठन को मजबूत बनाने के लिए दादी ऐसे ऐसे युक्तियां रचती थी, जो ये हमेशा हम सब कुमार सब बोलते थे ये कुमारों का दादी है। एक नशा होती थी क्यों कुमारों को बहुत, उसने नाम भी ऐसे कुमार का दादी था, कुमारों का दादी है, ये नशा रहती थी कि हम कुमारों को बहुत सपोर्ट देती थी दादी। तो कुमारों के लिए कैसे जीवन चलाना है, तो सभी कुमार दादी को पूछते थे, बोलते थे कि दादी हमारा तनख्वाह इतना है, हमारा आमदनी इतना है, हम क्या करें। दादी एक एक्यूरेट कीमत देती थी उसके लिए, इतना पैसा तुम्हारे लिए रखना, इतना बैंक में रखना, इतना इमरजेंसी में रखना, इतना माता पिता के लिए रखना, इतना यज्ञ के लिए करना। माना कोई भी ऐसा नहीं तुम सब डालो, ये नहीं, अपना पूरा परिवार के लिए पूछती थी, कौन कौन परिवार में है, क्या जवाबदारी है तुम्हारा, कितना तनख्वाह है, कितना दे सकते, कितना रह सकते, कितना इमरजेंसी फंड रखना है, कितना हेल्थ के लिए रखना है, ये सारा कंप्लीट डिटेल कुमारों की क्लास में बताती थी। अगर इंडिविजुअली पूछते थे तो इंडिविजुअली बताते तुम्हारा कितना, अगर कोई हम कोई भी सौगात लेके जाएंगे, कुछ भी है कोई भी लेके है, दादी पूछते कितना पैसा दिया इसको, भले नॉर्मली कोई पूछते नहीं, कभी कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं हम दादी के लिए तो नॉर्मली कोई पूछते नहीं है गिफ्ट का कीमत, लेकिन दादी जानना चाहती थी कि इसका कितना पैसा खर्च किया आपने, तो उस वैल्यू को वो जानती थी, इस चीज का इतना वैल्यू है और किसको दे सकते ये गिफ्ट दूसरे को, दादी तो नहीं रखती, दादी तो बेहद का, दूसरे को कौन सा व्यक्ति व्यक्ति को दे सकते हैं। तो ऐसे दादी का साथ घरेलू बात होती थी। जब भी हम दादी के साथ कभी कभी कोई निमंत्रण मिलता था सेंटर का उद्घाटन का, तो उस समय एक ही कार था, अम्बेसडर कार था, तो हम सब बस में बैठते थे दादी के, हम सभी मधुबनी उस बस में जाते थे। दादी के साथ पिकनिक भी होता था, जैसे इधर से अहमदाबाद जाएंगे, बीच में कहीं फील्ड मिलेगा अच्छा, उस समय साथ दादी सब हम सभी वो खाना जो ब्रेकफास्ट खोल के खाते थे, तो उस समय जैसे नीचे उतर के थोड़ी देर चलेगी दादी, दादी कार से उतर के बस में बैठ जाएगी, बोला मैं मधुबन निवासियों के साथ बैठती हूँ। तो ऐसे दादी को ये नहीं था कार में बैठना, कार में सफर करना, सीधा आके बस में बैठ जाती, बस में जब तक सेंटर मिलेगा तब तक दादी बस में बैठ के हमारे साथ गपचप लगाती थी। ऐसे था, दादी का कमर दर्द बहुत होता था, बहुत सहन शक्ति दादी को, अभी कमर दर्द है और नेक्स्ट मोमेंट में आके इधर मुरली सुना रहे, इतना दर्द। एक डॉक्टर श्रीखंडे था, जानते होंगे, हम बॉम्बे से आते थे, उसने बोला दादी तो सहन शक्ति की देवी है, इतना सहन शक्ति का जो उनका सहन करने का हाय, सहन शक्ति का देवी है, इसे दादी को बोलता था डॉक्टर श्रीखंडे। कभी कभी ये शांतिवन बनने के बाद हम कभी वीआईपी सीधर आते थे तो हम लेके जाते थे नीचे, अक्सर मुझे दादी से मिलने का रोज होता था, कोई ना कोई गेस्ट आते थे, मिलाने का सेवा निमित्त हमारा ही था, रोज दादी को मिलते थे, उसे सौगात दिलाना, टोली दिलाना, दादी बोलती थी सौगात सारा अरेंजमेंट करना। जब शांतिवन में वो शिफ्ट हो गए, बना इधर उधर का मैं वो ऑर्डर में नहीं बोल रहा हूँ, जो जो मुझे याद आया वो लिख रहा हूँ, इसीलिए रैंडम है ये सारा। सो शांतिवन में गया हम, दादी ने देखा, नागराज भाई तुम क्यों आया इधर? दादी वो गेस्ट आए थे उसको, नहीं नहीं तुमको इधर नहीं आना, हम सभी नीचे रहते हैं, उधर घर में कोई नहीं है, तुम ऊपर जाओ। ऐसे दादी जो जवाबदारी है ऊपर भी कोई जवाबदार व्यक्ति रहे, ऐसे बोला तुम नीचे नहीं आना, ऐसे बोलती जब भी देखती थी मुझे शांति में, तुम नीचे नहीं आना ऊपर ही रहो। एक बार सिंधी लोग आए तो दादी को मिलाना था, मैंने ऐसे दादी भी सिंधी है, ये सिंधी लोग आए, दादी सिंधी लोग आए हैं, ऐसे मैंने बोला। दादी के अंदर चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, माना इतना न्यारा ऐसे अपना कौम का है, इतना भी ये वो नहीं है उसके अंदर, नहीं सिंधी लोग आए उसको इंटरेस्ट नहीं, नहीं जैसे जनरल वाले हैं ऐसे ही, बोला उससे परे थी। सो हमारा जो सेवा दिया था, जो भी बाबा का परिवार आते हैं, दादी ने सेवा दिया था, जो भी बाबा का परिवार आते हैं तुमको ही अटेंड करना है। ऐसे जो भी निर्मल शांता दादी है, पुट्टू दादी है, सूर्य दादी है, नारायण दादा है, उनके बच्चे हैं, निर्मल शांता दादी का बेटी है, जो भी आते हैं, तो मुझे सेवा दिया था दादी ने। हमेशा जब भी नारायण दादा को फोन करना था, बार बार बुलाती, उस समय मोबाइल में भी कुछ नहीं था, तो ईशु दादी के ऑफिस में एक एसटीडी फोन था, उस समय ये टेलीफोन एक्सचेंज भी नहीं था, वो नहीं बनाया था उस समय की बात है। बाद में भी दादी बुलाती थी मुझे, नागराज भाई तुम्हारा दोस्त को फोन लगाओ, माना नारायण दादा को फोन लगाओ, दादी का पेटेंट वर्ड था, तुम्हारा दोस्त को फोन लगाओ, माना नारायण दादा को फोन लगा के मुझे बात करना, ऐसे बोलती थी। तो इधर दादी का रात को, मंजू बेन को पता होगा, रात को गीता पाठशाला चलती थी, जैसे चेम्बर होते ना बाबा चेम्बर, चेम्बर में क्लास कराता था, ऐसे ही दादी सभी बहनों को बुला के दादी के कमरे में ये सभी बहन जाके बैठते थे, मंजू बहन बैठती थी मुझे पता नहीं। तो उधर रात को घरेलू क्लास होती थी, उधर दादी रात को मुरली पढ़ती थी रोज। सो सभी बहन जाके दादी के कमरे में सब नीचे बैठ जाते थे और दादी मुरली सुनाती थी, अगले दिन की मुरली सुनाती थी। भाइयों कॉलो नहीं करते, सिर्फ घरेलू होता था पौध। अगर किसी भाई का पवित्रता के बारे में ऊपर नीचे होती थी, दादी तीन बार उनको माफ कर देती थी, माफ करती थी, बहुत क्षमा के स्वरूप थी दादी, माफ करती थी। और चौथी बार अगर हो जाती थी, अभी दादी बोलती थी अभी मेरा हाथ में नहीं, अभी बाबा का हाथ में है, अभी तुम घर चले जाना। तीन बार तो माफ करती थी इस सभी कुमारों को, जो भी मधुबनी वासियों को प्राइवेट में बुलाकर बोलती थी। एक बार क्या हुआ, कुछ बातें प्राइवेट होती है, कब कोई रिकॉर्डिंग उसमें भी एडिट करना पड़ता है, कभी ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुआ था, दादी सब मधुबनी वासियों को बुलाया, जिसको घर जाना है तो जाओ, कोई जबरदस्ती इधर नहीं रहना, ऐसे कड़क क्लास कराया दादी ने, कड़क क्लास कराया, सब चुप सीरियस हो गए, सब सीरियस हो गए, तो दादी ने गीत गाया, जाए तो जाए कहाँ, ऐसे गीत गाया, सब ठंडे हो गए, सीरियसनेस सब खत्म हो गए। कभी कभी दादी को ये रहती थी कि मधुबन वाले अच्छा पुरुषार्थ करें, तो दादी जाती थी भाइयों के कमरे में भी चली जाती थी, कौन कौन सोया है, कौन कौन उठा है, ये सारा चेक करने के लिए। तो एक बार क्या, दादी वो ठंडी के दिनों में थे, तो दादी शाल उड़ के भाइयों के लाइट हाउस में गई, तो एक भाई बाहर निकल के, ए बुढ़ी माता इधर क्यों आई है? ए भाइयों का दादी ऐसे टन करके देखा तो भाग गया। ऐसे जब भी कोई ये कॉन्फ्रेंस होती थी, कोई शिविर होता था, तो दादी हमेशा सभी से पूछती थी, सबका ठीक ठाक है, रहना है, खाना पीना ठीक है, जैसे माँ जैसे और दिल से, ऐसे नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं होता था दादी के अंदर, फॉर्मेलिटी दिल से बोलती थी, अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, अपना घर समझना है, खाने पीने का ऊपर नीचे है, किसी का परहेज है, सब मुझे हम बताना, आपको सब सुविधा मिल जाएगी, बहुत दिल से अंदर से आता था। कोई कोई फॉर्मेलिटी से बोलते हैं, लेकिन दादी का दिल से, जैसे माँ जैसे, तो पहला भाषण में यही होती थी, उसके बाद में ज्ञान सुना, पहले घर में सब ठीक ठाक है, सब यही पूछती थी। तो जब भी दादी को बाहर जाना होता था, तो अगर दोपहर को निकलना पड़ता था, तो दोपहर को रेस्ट करते हैं, तो जैसे उसका रथवान है तो रेस्ट करते, तो कभी कभी रथवान को जल्दी उठो, जल्दी दादी को जाना है, तो दादी बोलती थी, नहीं जल्दी नहीं करना है, रथवान को उठने दो, फ्रेश होने दो उसको, उसको चाय मिला है, चाय पिला दो, चाय पिलाने के बाद, फ्रेश होने के बाद जाएंगे, जल्दीबाजी नहीं करती थी। तो दादी ये भी ख्याल रखती थी, जो अपना रथवान है वो सब फ्रेश होकर आवे, चाय वाय पी के स्नान करके आवे। दादी जल्दीबाजी में भी किसी को ऐसे नहीं करने देती थी कि वो तुरंत भाग के आ जावे बिस्तर से उठ के, नहीं, उसका पूरा। कभी कभी मुरली में आता था कि ये ब्रह्मा बाबा भी पतित है, ऐसे मुरली में एक सेंटेंस आ जाता था, दादी को पढ़ने को इच्छा नहीं होती थी। बाबा का वो फोटो है ना इधर ओम शांति भवन में, उस तरफ मुड़ के, बाबा मैं ये नहीं पढ़ूंगी, बाबा ये सेंटेंस मैं नहीं पढ़ूंगी, ऐसे दादी बोलती थी। एक बार एक डॉक्टर आया था इधर, उसको हार्ट अटैक हो गया था, डॉक्टर को, तो उस समय इतना सुविधा नहीं होती थी इधर, मेडिसिन का ना हॉस्पिटल बनी थी, ना कुछ हुआ था, ना को उस इतना पैसे भी नहीं होता था इधर यज्ञ में, कि उसको अच्छे डॉक्टर को कहीं जलाए या टैक्सी करके भेजे, ये जवाबदारी, दादी का बदनाम नहीं होना चाहिए यज्ञ में। पता नहीं दादी ने क्या जादू किया, उसका सिर पर हाथ लेके घुमाया घुमाया घुमाया, उसको वो ठीक हो गया। दादी के अंदर ये भी एक हीलिंग पावर थी, क्योंकि उस समय हम इधर तो तुरंत हॉस्पिटल भेज देते, आजकल वो सुविधा है, इसीलिए दादी ने ये भी कमाल करके दिखाया। तो वो बारिश के दिनों में, आपको पता है, बारिश के दिनों में दादी बोलते थे, बारिश है, पकौड़ा मिलना चाहिए सबको, जैसे हलवा का बोलते थे, पकौड़ा के लिए भी बोलते थे बारिश के दिनों में। तो जैसे हम मुरली पूरा करके था, पकौड़ा तल के तैयार हो जाता था, इतना सभी दादी को कुछ इंस्ट्रक्शन देना, तुम जाओ पकौड़ा बनाओ, नहीं, मुरली में एक शब्द आया पकौड़ा मिलना चाहिए, वो अपना आप समझ जाते थे मधुमध्य, अभी पकौड़ा तल के तैयार करके लेके आना मुरली पूरा होने के, किचन वाले सुन रहे हैं, जैसे फल आता था, हाँ, झरने देखने के लिए जाती थी, हम मधुबन वाले भी उनके साथ जाते थे, जब बारिश के दिनों में झरने देखे, सब कट्टा परिवार जैसे झरने देखने के लिए जाते थे। और जब भी फल आता था दादी के लिए, वो दादी बोलती थी, नहीं सबको मिलना चाहिए, मधुबन वालों को सबको मिलना चाहिए, तो ऐसे दादी संकल्प करती थी और देखती थी सबको फल मिल जाए। दादी का जो बात, जब सभी समर्थन करते, जो दूसरे भी दादियां थे वो सभी समर्थन करते थे, ऐसे नहीं दादी के अगेंस्ट कोई नहीं जाते, दादी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सभी तो हमने सुना दादी के सामने इविल सोल भी डर जाते थे, ऐसे इविल सोल्स का आने का भी कोई हिम्मत नहीं होती थी। दादी को हमने देखा, एक तपस्या मूर्त है, फरिश्ता स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, अब दादी के पास जाके कोई भी संकल्प करते थे वो पूरा हो जाता था। दादी का इतना सबके ऊपर ब्लेसिंग, एक अलौकिक शक्ति हम फील करते थे। दादी एक लीडर के रूप में यज्ञ को संभाला पूरा, हर एक का बात सुनना, इतने बड़े 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 भाइयों का, महावीरों का, उन सबको एक एकत्रित करना, एक यूनिटी में चलाना, तो ये बहुत सेंटर के विघन भी आते थे, बहुत सबका बात सुनना, इनका भी सुनना, उनका भी सुनना। तो दादी को पूछते थे कि दादी इतना सेंटरों का समस्या है, आप कैसे सॉल्व करते हैं? दादी एक ही बात कही, मैं बाबा को सब सोम के सो जाती हूँ, बाबा जाने नींद भी आती थी। दादी को मालिश करते थे, सिर का मालिश करते थे, सो जब सो जाती थी उसका सिर का मालिश करके दादी नींद में चली जाती थी। दादी बोलती मैं बाबा को सोमती, बिकॉज क्योंकि हर एक का सेंटर उस समय बहुत समस्या होती थी। तो दादी सब एक लीडर के रूप में सबको शक्ति देती थी। कल चंद्रदास बाबूजी का बात सुना रहे थे, तो जो दादी मजा भी लेती थी और हंसते भी थे। चंद्रदास बाबूजी एक बार टूर में जाना था तो दादी ने मीटिंग बुलाई, दादी को दादी ने बोला चंद्रदास बाबूजी का ड्यूटी कौन लेगा? तो एक भाई ने उठाया, हाथ उठाया, मैं ड्यूटी लूंगा। तो तुम लेगे ड्यूटी, तुम करोगे, क्या करना? ना करना है ना दादी, और कुछ नहीं करना। दादी भी बहुत हंस पड़ी। एक साधु संत लोग सम्मेलन होता था, तो साधु संत जब सभी बोलते हैं दादी एक शक्ति स्वरूप है जिससे ये यज्ञ चल रहा है, तो सभी अपना अनुभव जो ये मेडिटेशन में सुनाते थे साधु संत लोग, सभी एक एक साधु संत लोगों को इतना दादी ने सेवा की, इतना प्यार से सेवा किया, तो सब गदगद गदगद हो जाते, सॉरी जो पानी हो जाते थे, जो उनका जो अहंकार है वो सब खत्म हो जाता था दादी के सामने, सब इस झुक जाते थे दादी के सामने। और दादी इतना प्यार से उनको सौगात, इतना फल फ्रूट, माना बहुत विशाल बुद्धि से, तो दादी सबको सम्मान करती थी, उनके लिए ड्रेस शॉल सब कुछ, इतना वो लोग कुछ बात नहीं, दादी का ही महिमा करते थे सभी लोग। दो कोई कोई बोलते थे हम अपना खाना बनाएंगे, अपना पूजा पाठ करेंगे, अपना सारा शास्त्रोक्त करेंगे, दादी उसके लिए सेपरेट कमरा देती थी। कोई कोई अग्निहोत करते थे तो अग्नि जलाना पड़ता था, दादी उसके लिए सब प्रबंध करती थी, उसका चेले भी आते थे, उनके लिए जो प्रबंध चाहिए दादी सब कुछ करके देती, उनका जो नियम पालन करना है। कोई कोई इधर खाना भी नहीं था, अपना खाना पकाना पड़ता था, वो खाना पका के और वो अग्नि में डाले के फिर उसको नैवेद्य जो है रखेंगे, नैवेद्य करना उसका, वो अपने रीति से दादी बोलते करो, उसके लिए सारा प्रबंध करते थे। एक एक रूम खटिया हटा देती थी दादी, पूरा इसमें उसको पूरा इंतजाम करके देती थी। सो दादी को एक बार पूछा, दादी आठ में कौन कौन है? आठ में कौन कौन है? दादी ने बोला, बाबा ने मना किया बताने के लिए, तो बाबा ने हमको बताया आठ में कौन कौन है, लेकिन हमको मना किया, हम नहीं बता सके। दादी आप तो है ना आठ में? तो दादी डायरेक्ट नहीं बोलते थे मैं हूँ, फिर थोड़ा मुस्करा देती, बस मुख से नहीं बोलती मैं हूँ करके, मुख से नहीं बोलती थी, कभी नहीं बोला। थैंक यू। ओम शांति।